एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसे विषय की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन है बिल्कुल सच। सिनेस्थीजिया।
हाँ, सिनेस्थीजिया मतलब एक ऐसी दिमागी हालत जहाँ आपकी इंद्रियां, आपके सेंसेस आपस में मिल जाते हैं।
बिल्कुल। सोचिए जरा, जैसे संगीत को आप रंगों में देख पा रहे हो,
या किसी शब्द का आपको स्वाद आ रहा हो, है ना कमाल?
है तो।
और इस अनोखी दुनिया को समझने के लिए आज हम जिनके काम को आधार बना रहे हैं वो हैं डॉक्टर रिचर्ड ई साइटोविक।
जी, एक जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट जिनके काम ने सिनेस्थीजिया की हमारी समझ को मतलब पूरी तरह बदल दिया।
और ये विषय आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है, क्यों?
देखिए, ये हमारी धारणा, हमारी चेतना और ये कि भाई हमारा दिमाग दुनिया को कैसे समझता है, इन सब पर बुनियादी सवाल उठाता है ना? सही कहा। ये सोचने पे मजबूर करता है कि हमारी अपनी रियलिटी आखिर है क्या।
बिल्कुल। तो आज कोशिश यही रहेगी कि डॉक्टर साइटोविक के नज़रिए से समझें कि सिनेस्थीजिया क्या है, ये होता क्यों है।
और हाँ, सबसे ज़रूरी, ये हमारे दिमाग और अनुभव के बारे में क्या बताता है। कोशिश करेंगे किसे आसान भाषा में समझें।
तो चलिए पहले डॉक्टर साइटोविक के बारे में थोड़ा जानते हैं। कौन थी?
डॉक्टर रिचर्ड ई साइटोविक एक अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट है, लेखक है और जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी।
और कमाल की बात यह है कि जब 20वीं सदी में मतलब ज्यादातर वैज्ञानिक सिनेस्थीजिया को भूल ही चुके थे,
हाँ, उसे कोई भाव नहीं दे रहा था।
तब इन्होंने ही मतलब डॉक्टर साइटोविक ने इसे वापस साइंटिफिक डिस्कशन में लाने का काम किया।
और इनकी क्वालिफिकेशन भी देखिए, मेडिकल डॉक्टर तो है ही एमडी, साथ में फाइन आर्ट्स में मास्टर्स भी, एमएफए।
अरे वाह, ये तो गजब का कॉम्बिनेशन है, साइंस और आर्ट्स।
हाँ, और ये उनके काम में दिखता भी है, जिस तरह वो साइंटिफिक बातों को भी मानवीय संवेदना के साथ रखते हैं।
बिल्कुल। सोचिए ना, वो दौर था व्यवहारवाद का, बिहेवियरिज्म का। विज्ञान सिर्फ उसे मानता था जिसे मापा जा सके, देखा जा सके।
हाँ, जो ऑब्जेक्टिव हो।
सही। अब किसी के मन के अंदर क्या चल रहा है, कोई आवाज को कैसे देख रहा है, ये सब तो व्यक्तिपरक, सब्जेक्टिव माना जाता था।
मतलब उसे वैज्ञानिक अध्ययन के लायक ही नहीं समझा जाता था।
बिल्कुल। उसे कल्पना या वहम कहकर टाल दिया जाता था। डॉक्टर साइटोविक उन पहले मॉडर्न साइंटिस्ट में से थे जिन्होंने कहा, नहीं, ये अनुभव असली हैं, हमें इन्हें गंभीरता से लेना होगा।
और उन्होंने 1980s के दशक में इस पर फोकस करना शुरू किया जब ये बिल्कुल भी फैशनेबल टॉपिक नहीं था।
सही कहा। और उनका नजरिया भी एकदम अलग था। उस समय सब मानकर चलते थे कि भाई सोचना समझना ये सब दिमाग की बाहरी परत नियोकॉर्टेक्स का काम है।
हाँ, वही हमारा थिंकिंग ब्रेन।
पर साइटोविक ने कहा, नहीं, सिनेस्थीजिया की जड़ें शायद नियोकॉर्टेक्स में नहीं बल्कि दिमाग के पुराने भावनात्मक हिस्से लिम्बिक सिस्टम में है।
ओहो, ये तो पूरी थ्योरी ही बदल देने वाली बात थी।
बिल्कुल। और इसी एक विचार ने सिनेस्थीजिया रिसर्च की दिशा ही मोड़ दी।
तो अगर हम डॉक्टर साइटोविक के काम का निचोड़ देखें तो वो क्या है?
सार यही है कि सिनेस्थीजिया कोई बीमारी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, नहीं, ये सिर्फ किसी की कल्पना है, बल्कि ये एक खिड़की है जिससे हम मानव मस्तिष्क कैसे काम करता है इसे बेहतर समझ सकते हैं।
अच्छा,
ये दिखाता है कि हमारा दिमाग असल में कितना जुड़ा हुआ है, इंटीग्रेटेड और मल्टीसेंसरी है, खासकर लिम्बिक सिस्टम के स्तर पर जो भावनाओं, यादों से जुड़ा है।
तो उनका काम कुछ बुनियादी सवाल उठाता है ना?
है ना, जैसे हमारी अपनी सच्चाई, हमारी सब्जेक्टिव रियलिटी आखिर बनती कैसे है।
हाँ, और क्या ये जो हमारी इंद्रियां अलग अलग काम करती दिखती हैं, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, क्या ये वाकई में अलग है या ये सिर्फ हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक भ्रम है?
बिल्कुल। और यही साइटोविक का सबसे मजबूत तर्क आता है। वो सिनेस्थीजिया को एक रोजेटा स्टोन की तरह देखते हैं।
रोजेटा स्टोन मतलब एक कुंजी।
हाँ, एक कुंजी जो दिखाती है कि भावनाएं, इमोशंस और हमारे सोचने समझने की शक्ति, कॉग्निशन, ये कितने गहरे जुड़े हैं।
ये उस पुराने दिमाग एक कंप्यूटर है वाले मॉडल को चुनौती देता है।
सही। उस मॉडल में भावनाएं जैसे कोई बाद में जोड़ा गया फीचर हो। साइटोविक कहते हैं, नहीं, भावनाएं बुनियाद हैं।
अच्छा,
और सिनेस्थीजिया का अध्ययन हमें सभी इंसानों की चेतना की उस अंदरूनी, भावनात्मक और इंटरकनेक्टेड बनावट की एक झलक देता है।
और ये सब उन्होंने इतनी आसानी से समझाया है कि कोई भी समझ सकता है, वैज्ञानिक हो, कलाकार हो या बस कोई भी जिज्ञासु व्यक्ति।
बिल्कुल। तो चलिए अब उनके काम की कुछ और गहराइयों में उतरते हैं।
हाँ, तो साइटोविक की खुद की एक खोज शुरू कैसे हुई? कहानी भी मजेदार है।
हाँ, एक डिनर पार्टी से वो एक ऐसे आदमी से मिले जिसने कहा कि उसे खाने का स्वाद ज्यामितीय आकृतियों में महसूस होता है।
क्या स्वाद आकृतियों में?
हाँ, उस आदमी ने असल में शिकायत की कि इस चिकन में नुकीले हिस्से काफी नहीं हैं।
हे भगवान, चिकन में नुकीले हिस्से, ये सुन के तो कोई भी चौंक जाएगा।
जाहिर है, डॉक्टर साइटोविक भी हैरान रह गए और इसी अजीब अनुभव ने उन्हें इस विषय पर दशकों तक रिसर्च करने के लिए प्रेरित किया।
तो यहाँ से सिनेस्थीजिया की एक साफ परिभाषा निकलती है, ये है क्या आखिर?
ये है इंद्रियों का अनैच्छिक जुड़ाव, मतलब इनवॉलंटरी। एक इंद्रिय का अनुभव अपने आप दूसरी इंद्रिय में भी कुछ महसूस कराता है।
अच्छा, मतलब हम जो कह देते हैं मीठी आवाज या कड़वी यादें, ये वो नहीं है?
नहीं, वो तो अलंकालिक भाषा है। साइटोविक ने असली सिनेस्थीजिया के लिए कुछ पक्के क्राइटेरिया बताए, जैसे कि ये अनैच्छिक होता है,
आप इसे शुरू या बंद नहीं कर सकते।
सही, ये स्थानिक होता है, मतलब रंग हवा में दिख सकता है, ये सुसंगत होता है, ए हमेशा लाल ही दिखेगा अगर किसी के लिए ऐसा है तो,
और ये यादगार होता है, बचपन से याद रहता है।
हाँ, और इसमें अक्सर एक भावनात्मक पुट भी होता है, एक इमोशनल चार्ज।
कमाल है, पर इतने साफ अनुभव होने के बावजूद वैज्ञानिक इसे नजरअंदाज क्यों कर रहे थे इतने सालों तक?
वही व्यवहारवाद का असर था। साइंस सोचा था कि भाई जिसे हम नाप नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसे स्टडी कैसे करें,
मन के अंदर के अनुभव उन्हें कैसे जांचें?
बिल्कुल, तो इसे गंभीरता से लिया ही नहीं गया। ये समझना जरूरी है कि क्यों इस पर रिसर्च पिछड़ गई।
और फिर जब चेतना, कॉन्शियसनेस और सब्जेक्टिव अनुभव पर नजरिया बदला, तब जाकर इस पर काम शुरू हुआ।
हाँ, और डॉक्टर साइटोविक इस बदलाव में सबसे आगे थे। उन्होंने वो हिम्मत दिखाई जो उस वक्त कम लोगों में थी।
अब आते हैं उनकी उस क्रांतिकारी बात पर, लिम्बिक सिस्टम वाले।
हाँ, उन्होंने कहा, सोचो लिम्बिक सिस्टम किससे जुड़ा है? इमोशंस, मेमोरी, सर्वाइवल।
हाँ, हमारे गहरी भावनाएं, यादें
और सिनेस्थेटिक अनुभव भी तो ऐसे ही होते हैं, अचानक ऑटोमेटिक भावनाओं से भरे हुए। उन्होंने इन दोनों के बीच कनेक्शन देखा।
ये तो तर्क की बात हुई, पर क्या इसका कोई सबूत था?
हाँ, उन्होंने सबूत भी दिया। 80 के दशक में जब fMRI जैसी तकनीकें नहीं थीं, उन्होंने ज़ीनॉन ब्लड फ्लो तकनीक यूज की।
अच्छा, ये क्या दिखाती थी?
ये दिखाती थी कि दिमाग के किस हिस्से में खून का बहाव ज्यादा है, मतलब कौन सा हिस्सा ज्यादा एक्टिव है।
ओके।
उन्होंने माइकल वॉटसन पर स्टडी की, वही जिन्हें स्वाद में आकार दिखते थे। जब वॉटसन स्वाद चख रहे थे तो पता क्या हुआ?
क्या हुआ?
उनके सोचने वाले दिमाग नियोकॉर्टेक्स में एक्टिविटी कम हो गई और लिम्बिक सिस्टम, खासकर हिपोकैम्पस में एक्टिविटी बढ़ गई।
अरे वाह, ये तो सीधा सबूत था।
बिल्कुल, पहली बार ये पुख्ता सबूत मिला कि सिनेस्थीजिया की जड़ें हमारे भावनात्मक दिमाग में हो सकती हैं। कितना रोमांचक रहा होगा वो।
काफी कॉमन है, जैसे ए लाल, बी नीला वगैरह, पर इसके अलावा भी बहुत कुछ है।
जैसे
ध्वनि रंग सिनेस्थीसिया, आवाजों के रंग दिखना, स्वाद आकृति जैसा वॉटसन का था। कुछ लोगों को तो पर्सनालिटी का भी रंग या स्वाद महसूस होता है।
पर्सनालिटी का स्वाद कमाल है, ये दिखाता है कि जुड़ाव कितने लेवल पर हो सकता है।
हाँ, कुछ बेसिक सेंसरी लेवल पर, कुछ हाई लेवल कॉग्निटिव लेवल पर।
और क्या इसमें जेनेटिक्स का भी कोई रोल है?
लगता तो है, ये अक्सर परिवारों में चलता है, कई बार माँ से बच्चों में जाता देखा गया है।
अच्छा,
और एक और दिलचस्प थ्योरी है, नवजात सिनेस्थीसिया। साइटोविक ने इस पर भी बात की।
नवजात सिनेस्थीसिया मतलब
ये कि शायद हम सब बच्चे सिनेस्थेटिक पैदा होते हैं। जन्म के समय हमारे दिमाग में इंद्रियों के बीच जरूरत से ज्यादा कनेक्शंस होते हैं।
ओके, फिर जैसे जैसे दिमाग मैच्योर होता है, फालतू कनेक्शन हट जाते हैं, इसे सिनेप्टिक प्रूनिंग कहते हैं।
तो सिनेस्थीसिया उनमें होता है जिनमें ये छंटाई पूरी नहीं होती?
शायद उनके कुछ शुरुआती कनेक्शन बाकी रह जाते हैं। सोचिए, हम सब शायद एक ज्यादा कनेक्टेड दुनिया में पैदा हुए थे।
ये तो बहुत ही दिलचस्प विचार है। अच्छा, एक और बात जो हमेशा सामने आती है, सिनेस्थीसिया और क्रिएटिविटी का क्या कनेक्शन है?
हाँ, ये बहुत आकर्षक सवाल है। कई आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, राइटर सिनेस्थेट रहे हैं या हैं, जैसे कैंडिंस्की, लिस्ट, नबोकोव।
हाँ, कैंडिंस्की कहते थे उन्हें रंगों की आवाज सुनाई देती है, नबोकोव को अक्षरों के रंग दिखते थे। तो क्या ये बस संयोग है?
या क्या सिनेस्थीसिया खुद क्रिएटिविटी बढ़ाता है? या फिर जो दिमाग की बनावट है, अलग अलग हिस्सों के बीच ज्यादा कनेक्शन, वही क्रिएटिव सोच में मदद करती है?
जैसे अलग अलग आइडियाज को जोड़ना, पैटर्न पहचानना।
बिल्कुल, ये अभी भी रिसर्च का एरिया है, पर कनेक्शन तो है।
बागी अजूबा नहीं है।
नहीं, ये चेतना की उस बड़ी पहेली को समझने में मदद कर सकता है कि भाई न्यूरॉन्स की एक्टिविटी से हमारा पर्सनल अनुभव कैसे बनता है, ये रंग, ये स्वाद, ये फीलिंग आती कहां से है।
हाँ, वो हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस।
सही। तो सिनेस्थीसिया का अध्ययन हम सबके लिए धारणा, वास्तविकता और चेतना के बारे में बड़े सवाल खड़े करता है। ये दिखाता है कि हमारी नॉर्मल रियलिटी भी कितनी सब्जेक्टिव है।
तो अगर हम साइटोविक के काम के मुख्य संदेशों को देखें तो क्या बातें निकलती हैं?
पहली बात तो ये कि व्यक्तिपरक अनुभव वैध है। किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस, भले ही हम उसे नाप ना सकें, वो असली है और साइंटिफिक स्टडी का हकदार है।
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है।
दूसरा, दिमाग अलग अलग हिस्सों में बटा नहीं बल्कि ज्यादा जुड़ा हुआ है। सिनेस्थेट्स में ये जुड़ाव, ये कनेक्टिविटी ज्यादा होती है, खासकर सेंसरी और इमोशनल एरिया में। ये कमी नहीं बल्कि दिमाग के संगठन का एक अलग तरीका है।
तीसरा, इंद्रियां उतनी अलग नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। वो तरल हैं, फ्लूइड हैं। सिनेस्थीसिया बस इस छुपे हुए जुड़ाव का एक ज्यादा साफ रूप है।
शायद इंद्रियों का अलगाव ही एक भ्रम हो।
हो सकता है। और चौथा, भावना की प्रधानता। हम सोचते हैं कि पहले सोचते हैं फिर महसूस करते हैं। साइटोविक कहते हैं शायद उल्टा है, इमोशन पहले हैं, वो बुनियाद है।
हाँ, हमारा लिम्बिक सिस्टम ही तय करता है कि क्या चीज हमारे लिए जरूरी है।
और पांचवा, रूपक और रचनात्मकता की जड़ें। ये जो हम कहते हैं कड़वी ठंड, मीठी आवाज, ये कहां से आता है?
शायद इसी अंदरूनी क्रॉस मॉडल मैपिंग से, जैसे बूबा की इफेक्ट। गोल शेप बूबा लगती है, नुकीली कीकी। ये दिखाता है कि आवाज और शेप के बीच कनेक्शन पहले से मौजूद हैं।
ये सारे विचार तो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं।
हाँ, डॉक्टर साइटोविक के काम में ऐसी कई बातें हैं,
जैसे उनका ये कहना कि सिनेस्थीसिया इंद्रियों का जुड़ाव नहीं है बल्कि उनके अलग होने में विफलता है। ये तो पूरी सोच ही पलट देता है।
बिल्कुल। शायद हम सब जुड़े हुए पैदा होते हैं और नॉर्मल होने का मतलब है इन जुड़ावों को काटना।
और ये कितना जरूरी है, सिनेस्थेटिक की वास्तविकता किसी और की तरह ही मान्य है। मतलब दूसरों के अनुभवों का सम्मान करना, भले ही वो हमें समझ ना आए।
हाँ, ये सहानुभूति सिखाता है।
और ये विचार, सिनेस्थीसिया चेतना में ही एक खिड़की हो सकता है। ये इसे एक मामूली जिज्ञासा से कहीं बड़ा बना देता है।
सही। शायद इसे समझकर ही हम चेतना को समझ पाएं।
और ये नजरिया भी बहुत पॉजिटिव है। सिनेस्थीसिया का अनुभव करने वाला मस्तिष्क टूटा हुआ नहीं है, ये उन्नत, एनहांस्ड हो सकता है। ये न्यूरोडाइवर्सिटी को एक ताकत की तरह देखता है।
हाँ, दिमागी भिन्नता को कमी की जगह एक वेरिएशन की तरह देखना।
और आखिर में, हम सभी जितना महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक सिनेस्थेटिक हैं।
हाँ, ये हम सबको जोड़ता है, हमारी भाषा, हमारे सहज कनेक्शंस।
हाँ, शायद हम सबके अंदर ये क्रॉस मॉडल कनेक्शन कुछ हद तक मौजूद हैं।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? बहुत गहरा असर है। शिक्षा में देखिए, ये बताता है कि अलग अलग लर्निंग स्टाइल होते हैं। मल्टी सेंसरी टीचिंग सबके लिए अच्छी हो सकती है।
हाँ, पढ़ाने के साथ दिखाना, सुनाना, ये न्यूरोडाइवर्सिटी को अपनाने की बात करता है।
बिल्कुल। क्रिएटिविटी के लिए तो ये खजाना है। ये आपको अलग अलग आइडियाज को जोड़ने, लीक से हटकर सोचने के लिए प्रेरित करता है।
हाँ, अप्रत्याशित कनेक्शन पर ध्यान देना।
व्यक्तिगत तौर पर ये हमारी सहानुभूति बढ़ाता है, दूसरों को समझने में मदद करता है जिनकी दुनिया हमसे अलग है।
कम जजमेंटल बनाता है। और भाषा, हमारी रोज की बातचीत इन क्रॉस सेंसरी बातों से भरी पड़ी है। ठंडा व्यवहार, गर्म जोशी, फीकी मुस्कान।
सही कहा। ये सिर्फ मुहावरे नहीं है, ये शायद दिमाग के काम करने के तरीके का ही सबूत हैं।
मेरे लिए तो इस चर्चा से सबसे बड़ी सीख यही है कि दिमागी भिन्नता सिर्फ एक अंतर है, कोई कमी नहीं। हमें नॉर्मल की परिभाषा को बड़ा करने की जरूरत है। हर किसी की सच्चाई अपनी जगह वैध है।
और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि विज्ञान कैसे आगे बढ़ता है। कभी कभी अजीब लगने वाली चीजों को स्टडी करके ही हम सबसे गहरी बातें जान पाते हैं। साइटोविक का काम हमें इमोशन, परसेप्शन और रियलिटी पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है।
तो श्रोताओं, आज की बात खत्म करने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिएगा, क्या आपकी इंद्रियां भी कभी आपस में बातें करती हैं? क्या कभी कोई धुन सुनकर कोई रंग याद आया, या किसी गंध से कोई तस्वीर,
या किसी नाम का कोई स्वाद? हो सकता है हम सबकी दुनिया में सिनेस्थीसिया की रंग थोड़े बहुत बिखरे हों, बस ध्यान देने की जरूरत है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।